करते हैं और हम समझते हैं कि ये दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। वो नहीं, वो नहीं,
वो तो
बहुत सॉफ्ट है। जब तक बच्चा नहीं जानता है तब तक तो ऐसा करेगा, किंतु जहां उसको ज्ञान होता चाहता है फिर मैया का चरण की धूली लेकर के सिर पर लगाएगा ना।
जो कपड़े धोते हैं उनको ज्ञान नहीं है,
इसका ज्ञान
नहीं
है, जरूर कुछ लगेगा, अज्ञात रूप में लगेगा, लेकिन उसके लिए क्षमा है। यदि कभी उसने क्षमा मांगा और भगवान का नाम किया, संतों के संग में आ जाएगा तो हो सकता है, और यदि नहीं हुआ तो वैसे ही लोग ही रावण जैसे असुर बनते हैं, वही लोग नास्तिक बनते हैं, उनकी शिक्षा वैसी कुछ नहीं होती। गंगा को साधारण एक पानी देखते हैं, यमुना जी को सालग्राम को पत्थर समझते हैं, भागवत इत्यादि को कागज का टुकड़ा समझते हैं।
महाराज हम लोग भी तो पहले जैसे काशी के बारे में नहीं मालूम था या किसी चीज के बारे में नहीं पता था,
किंतु तुम्हारी ऐसी अश्रद्धा तो नहीं थी ना, तुम इग्नोरेंस था।
मतलब हमारे जैसे किसी को घर में मालूम ही नहीं है, या उनसे अगर वो उस रूप में जैसे पाप हो जाता है तो वो भी पापी हुआ, जैसे काशी में हम लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं था।
पापी वैसे होते हैं जो गंभीर पाप होते हैं, और कुछ होते हैं जैसे साधारण जगहों में जो पाप होते हैं वो एक तरह से क्षम्य है, किंतु तीर्थों में साधु संघ में रह करके जो पाप होते हैं ना, जानबूझ करके वैष्णव के संघ में आ गए और फिर आ करके फिर जो पाप करते हैं वो वज्र पाप हो जाता है, वज्र डिप हो जाता है। कि गुरु वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरु वैष्णव की शास्त्र की भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये आप जानते हैं, और जान करके भी यदि कर रहे हैं तो ये बड़ा भारी अपराध है, और नहीं तो पाप है।
पाप और अपराध में फर्क
बहुत अंतर है।
जैसे अब कई लोग जिनको पता ही नहीं है वो लोग रोज का पाप इतना मीट और ये सब कुछ खाते हैं,
ये पाप है।
हाँ इतना सब तो वो फिर उनको तो मालूम ही नहीं है कि ये पाप है,
इसलिए वो पाप है।
और अगर उन्हें बता दिया जाए कि ऐसे नहीं ऐसे करो और फिर भी वो करें,
बता देने पर वो समझ करके समझ लें इसके बाद में यदि वो करते हैं तब फिर
वो अपराध
नहीं, वो भी अपराध नहीं, वो भी पाप है। अपराध है उसमें, अपराध और पाप में होता है। भगवत संबंधी वस्तुओं के प्रति देश की भावना से जो काम किए जाते हैं वो अपराध
है। वैष्णव है उसने अगर कोई गलत लिया है या कोई गलत बात अगर बोली है, दूसरा वैष्णव के बारे में अगर डिस्कशन करता है तो वो अपराध है।
अब जैसे देखो, पहले ये देखिए कि ये वैष्णव है कैसे। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, जीव गोस्वामी, ये दोनों वैष्णव है, इसमें कोई शंका की बात नहीं ना, कोई शंका ही नहीं है। जीव गोस्वामी भी वैसे ही हैं, बल्कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के गुरु जी हैं। जीव गोस्वामी ने भक्त स्वामी सिंधु के एक्सप्लेनेशन में बतलाया, टीका में बतलाया, जो ये जो रूप गोस्वामी ने ये परकिया भाव जो कहा है ये केवल मूर्खों के लिए कहा गया। ये यथार्थ में परकिया भाव नाम की कोई चीज नहीं है। वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में परकिया नहीं है, और यहाँ पर गोपियां सभी स्वकीय कृष्ण की पत्नी थी, क्योंकि वधु शब्द का प्रयोग आया है, इसलिए कृष्ण की वो राधा जी उनकी पत्नी थी, क्यों उनके विवाह का उल्लेख ब्रह्म वैवर्त में कुछ है जो ब्रह्मा जी ने आकर के उनकी शादी कराई, और ये सब गोपियां कात्यायनी का व्रत करके कृष्ण से विवाह किया, इसलिए ये उनकी पत्नी थी। कृष्ण पति हैं और ये उनकी पत्नी, इसलिए पारकीय भाव केवल रसस्वादन के लिए ऐसा कहा। विश्वनाथ तक उस इसके बाद में गौड़ीय वैष्णव में ये भाव लुप्त होने लगा, परकीयता भाव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी आए, उन्होंने फिर एक टीका लिखी, उनकी अलग टीका है। उन्होंने कहा कि रूप गोस्वामी जो लिखा है वो ठीक है, जी गोस्वामी ने अनाधिकारी व्यक्तियों के लिए ऐसा लिखा क्योंकि उन्होंने स्वयं ही लिखा है परीक्षाया। परीक्षाया मैंने दूसरों की इच्छा से ऐसा, दूसरों के कल्याण के लिए ऐसा लिखा, और स्वेच्छा जो लिख रहे हैं वो परकिया बात मेरा है। अब लोगों की आंख खुली, केवल यही नहीं, उन्होंने जो जो पॉइंट लेकर के बताया जो पति हैं, तो यदि पति हैं कृष्ण गोपियों के तो भागवत तो फिर गलत हो जाएगा। गोपियां अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के पास में बंसित ध्वनि से गई, वहां पर ये उल्लेख है, पति सुतान्वय रात्रि ब्रह्मान अति दिलंघते। विलंघ माने क्या होता है, लांग करके पतियों को छोड़ करके कोई संबंध न रख करके कृष्ण के पास, पुत्र पति घर सब छोड़ करके लोक लज्जा धर्म सब छोड़ करके गए। यहाँ तक कि उद्धव जी कह रहे हैं कि आसामहो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने दुष्टजन आर्य पथम हित्वा मने छोड़ करके। क्या आर्यपथ, आर्यपथ मने अपने पतियों को छोड़ना, ये आर्यपथ को छोड़ना, ये छोड़ करके गए तो पति को छोड़ करके गया। फिर यदि ये बात ठीक थी, ये पति ही थे, तो परीक्षित महाराज क्या मूर्ख व्यक्ति थे जो उन्होंने कहा जैसे ये दूसरों के साथ में पड़दारा भी मर्शन, दूसरों गोपियों के साथ में उन स्त्रियों के साथ में कृष्ण ने रास विहार ये सब किया, ये 16,000 जो या 16 लाख या 16 करोड़ जो गोपियां थी ये कौन सी थी, कृष्ण की कोई पत्नी थी, कृष्ण का तो उपनयन ही नहीं हुआ ब्रज में, तो बिना उपनयन का विवाह कहीं होता है आर्य धर्म में। इस तरह से उनके समस्त बातों को काट करके किया। ये क्या दोनों में जो लड़ाई हुई उनके बाद इनका अपराध है या और उन्नत हुआ ये भाव, इसलिए दूसरे जो समझेंगे कहा अरे ये दोनों में ये तो ये हम लोग कहेंगे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं इनका समझना बड़े बड़े उत्तम अधिकारियों से भी बड़ा समझना बड़ा भारी कठिन है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, समय के अनुसार में वो जरूरत था और समय के अनुसार में इसकी जरूरत थी, इन लोगों ने एक पद पूर्ण किया। ये एक ही विश्वनाथ रूप गोस्वामी के ये दो भुजाएं हैं, एक उसकी शिक्षा देता है इसकी, मैंने जो अनाधिकारी हैं वो नीचे रहें, जो अधिकारी हैं ऊपर हैं, तो इसलिए ये अपराध नहीं होगा। इसलिए वैष्णव में मान लिया कि कहीं परिवार कुछ ऐसा है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी और कोई विधि मार्ग का कृष्ण का भक्त है, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, रहना भी नहीं चाहिए, तो जाति यही भाव नहीं है, वो अपने स्वभाव के अनुरूप जैसा भजन कर रहा है, स्वजाति आशय स्निग्ध वैष्णवों का अपने उन्नत संग करो तब भक्ति उन्नति होगी। स्वजातीय आशय स्निग्ध माने क्या, स्वजातीय अपने हृदय में, आशय माने होता है हृदय, अपना हृदय जैसा है ठीक उसी तरह का भाव वाला अपने से उन्नत सिद्धांत भी दरसिक वैष्णवों का संग करो तो उन्नति होगी। जहां जहां जैसे वैष्णव नाम हो गया, तिलक लगा लिया, कंठी माला धारण किया, संग के लिए
आशय
स्वजातीय आशय स्निग्ध
आश्रय
आशय मैंने हृदय अपने पर कृपालु होनी चाहिए, आश्रय नहीं आश्रय नहीं आश्रय आशय मैंने स्वजातीय आशय स्निग्ध स्निग्ध मैंने अपने पर करुणा सी, आपको कुछ कहने के लिए लड़ रही हाँ इसको कहना चाहिए, जो गुजर
मैं जिसकी पहचान कैसे करने की कौन वैष्णव
है, अभी तुम लोगों के लिए नहीं है, अभी तुम लोग अभी हरि नाम करेगी चांत करेगी भागवत सुनेगी हरि कथा ऐसे सुन रही है, अभी ये जैसे प्रश्न उत्तर हुआ जब यही हृदय में जब पूर्ण रूप से होकर के पूर्ण रूप से इधर में चलेगा
जी, ऐसी गलती तो हो ही जाती है कि जैसे किसी की कोई बात बुरी लगी तो उसके बारे में कुछ कह दिया, या
यदि द्वेष भाव से कहा है तो अपराध नहीं तो अपराध नहीं तो भी वैसा भी नहीं करना चाहिए। अब जैसे उस दिन का हमारा रिकॉर्ड है ना लिया था
वो
उसका रिकॉर्ड बना करके सब दे दीजिए ना लोगों को,
वो जो घर पे लिया था
हाँ यही पतों का, एक कोई आए थे मायापुर से, एक मायापुर से सन्यासी आए थे, उनका भी नारायण महाराज नाम और मेरा भी नारायण महाराज नाम है, नहीं नहीं हमारे यहाँ सुनो 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 इधर वो मायापुर से भक्तिविलास तीर्थ महाराज जी के शिष्य सन्यासी तो वो है तो बहुत, हमारे से भी उम्र उनकी 4-5 वर्ष की 8 वर्ष बड़ी होगी, हमारे बहुत पीछे से उन्होंने संन्यास लिया। अभी जिस समय वो कॉलेज में पढ़ते थे एमए या किसी, उस समय मैं ब्रह्मचारी होकर के मठ में अपने गुरुजी की सेवा में था, उन्हीं के घर में किराया का मकान में हम लोग रहते थे, गुरुजी कलकत्ते में गौड़ीय वेदांत की स्थापना हुई थी जिसमें स्वामी महाराज जी भी आए थे। तो वो प्राचीन आदमी है, इनको जानते होंगे, किंतु तीर्थ महाराज जी के शिष्य हैं। तो वो अभी हाल में कहीं इंद्रप्रस्थ गौड़ीय मठ में आए थे मालकागंज, तो एक लड़का उनका वहां जाता था तो उनके प्रवचन में बैठ गए। तो उन्होंने उसको कहा कि बड़े स्वाभिमानी थे, अहंकारी थे, अब तांत्रिक थे, किया क्या, मैं सबकी जो त्रुटियां हैं मैं सब जानता हूं, मैं बहुत पुराना आदमी हूं। उस समय उनकी उम्र शायद 75-76 या कुछ ऐसे होगी, वही नारायण महाराज जी जिनकी बात कर रहे हैं ना, अभी 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 इस वर्ष की बात, और दूसरे जितने महाराज हैं उनकी गलतियां भी मैं जानते हैं, ये क्या क्या कहां उनकी त्रुटि है ये भी सब कुछ बोल रहे हैं। वो बड़े दांतिक क्या समझ उनके लिए, स्वामी महाराज जी के लिए, रूपा जी के लिए बड़े दांतिक थे, किसी से मिलते नहीं थे या क्या, किस लिए कहा,
और उनके सिद्धांत ठीक नहीं है ये भी,
हाँ, सिद्धांत में भूल भी है, और भी जितने होंगे मैम सब लोगों का भूल में
बता। मुझे बताना मैं किस करूँगा तो,
ना हमारे बाद में बोले। तो वो बच्चा आकर के हमसे कहा, यहाँ आकर के यहीं पर बैठा हुआ था वो, एक तो हमारे हृदय में आग लग गई। तो हमने कहा जैसे तुमने गंगा जी में जा करके कपड़ों के साथ में स्नान किया कि नहीं किया, और तुमने वहाँ पर प्रतिवाद क्यों नहीं किया। वो पूछ रहा था जो सन्यासी एक दूसरे सन्यासी की निंदा करे तो अपराध है कि, मैंने कहा इसे घोर अपराध कुछ नहीं, ये जान बुझ करके हिंसा की वजह से ये कह रहा है, नहीं तो देखो जी बीच में इतना सुंदर वो कैसे सोचा, इसने कितना प्रचार किया है, सब लोगों को उनका ऋणी होना चाहिए। आज हमारे भावों की जो मैं नहीं कर सकता ये सब विश्व में प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मांस खाने वाले को, क्या क्या करने वालों को, व्यभिचार में सदा लिप्त रहने वाले उनको, जो कि हरिनाम प्रणाम क्या क्या कुछ है, सबको ले जाकर के कितने राष्ट्र में कितने विदेशों में हमने ये सब कर दिया, जो कि कितने भाषाओं में गीता का प्रकाश किया ना, क्या क्या, इसलिए उनके समझ में नहीं आता। उनका अभिमान कैसा है, कुछ हो सकता है कभी किया हो, उनको समय नहीं है, कोई मिलने आया होगा, वो मिलने आए होंगे, बड़े व्यस्त रहे होंगे उस समय में, अब उसको दाम्भिक समझ लिया, किंतु उनके क्रियाकलाप से तो आदमी को समझना चाहिए दाम्भिकता नहीं, ये तो परम उदारता है। इसलिए वैसा यदि कोई सन्यासी करता है द्वेष बुद्धि से करता है अपराध, अब द्वेष नहीं है, ऊपर से ऐसे ही गोपियों ने कृष्ण उसे अक्रूर से कहा, अक्रूर नहीं उद्धव जी से, वो महालंपट व्यक्ति जिसे ब्रज में बचना बड़ा भारी मुश्किल है गोपियों के लिए किसी के लिए भी, वो लंपट व्यक्ति से हमारा कोई भी संबंध नहीं, एक तो वो झूठा है, उसके वचनों पर विश्वास नहीं किया जाता, और उसे तुम संधि की बातें कर रहा है, उसे सुलहाना हम नहीं करेंगे, तुम लौट जाओ यहाँ पर, तू क्यों पागल आया, मदिरा पाइप पिया है वो, उसके यहाँ मदिरा की भीड़ लगी है, शराब वहाँ पर भरे पड़े हैं मधु, तुम वहीं से आ रहा, मदिरा पी करके नहीं आने से ऐसी बात कहता तू, उसे संधि कर लो। अब ये जो चोर लंपट झूठा और क्या शब्द है, धूर्त मैंने ब्रजेंद्र दत्ता ने, ये झूठे बोलने वाले हैं, क्या कर रही है, त्योरी क्यों चढ़ गई, तो ये तो अपराध होना चाहिए ना। आज जो ब्रह्म साक्षात हैं उनके लिए झूठा लंपट चोर, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम उनको भूल चुकी हैं, हम उनके पास में कभी नहीं जाएंगे, वो आएंगे तो यहाँ पर हम उनसे मिलेंगे भी नहीं, तो ये अपराध हुआ कि नहीं, ये प्रीति गर्भ है। प्रीति गर्भ माने क्या,
प्यार में
भीतर में से। अभी हम लोग आए ना तो एक लड़की अपने पति को कहते ये तो देखिए ये झूठे हैं, आप झूठे हैं, सोमनाथ जी को कह रही थी।
डर गई, डर गया। मैंने कहा कि मैं आया हूँ तो मेरे को डांस।
7 दिन तो कोई सूद नहीं ली, हम लोगों का कोई खबर नहीं बदला, तो शुक्रधाना स्वाभाविक है। ये प्रति गर्भ है। और ये शिशुपाल कृष्ण को कह रहा है आप बड़े धर्मात्मा है, बड़े सत्यवादी हैं, अपनी मैया से जो साथ इतना सफेद सत्य कहे कि मैया मैंने माखन नहीं खाया, बचपन में चोरी किया, अरे इससे क्या धार्मिकता की बात होगी, जो समस्त गोपियों के वस्त्र लेकर के ऊपर चढ़ गया, अब इससे क्या कुछ हो सकता है, ये क्या चीज है, ये निंदा गर्भ स्तुति है, ये अपराध।
पहले प्रीति गर्भ
हमने कहा था प्रतिगर्भ निंदा, ये निंदा नहीं है, प्रति भीतर में रखते हुए ऊपर से जो निंदा जैसी बातें होती हैं, अरे आप तो पृथ्वी का सत्य का ठीका ले रखा है कृष्ण के लिए, गोपियां कह रही हैं आप कृपया यहाँ मत आए, आप पधारिए बाहर में जाइए, जिनसे आपकी त्रुटि है वहीं पर जाइए। ये प्रेम के उद्गार है, ये प्रेम के उद्गार है, ये निंदा नहीं। किंतु दुर्योधन की बात, ये कर्ण है, दुशासन है, ये सब लोग जो हैं, शिशुपाल दंत बक्र, ये निंदा गर्भ स्तुति, ये सब ठीक।
जैसे आप कहते हैं द्वेष, अपराध करना भी इतना आसान नहीं है,
हाँ अपराध करना भी इतना आसान नहीं,
जब तक द्वेष
द्वेष आ करके जब होगा तब तो होगा, नहीं तो भगवान जानते नहीं है, वैष्णव लोग जानते नहीं है, थोड़ी सी बात हो रही है, गुरु भाई हैं उनमें कुछ बातचीत हो रही है, ये सब वैधल्री चल रही है, वहाँ अपने प्रचार की वैधल्री चल रही है, वैधल्री ने कुछ बातें कह दिया, अरे आप कुछ नहीं जानते हैं, ये सब ये विवाद ही नहीं। चंद्राली और राधिका जी का परस्पर व्यवहार और निंदा अपराध ये सबसे उत्तर, वैसे वैष्णव लोग जो हैं घर छोड़ करके आए हैं, यदि परस्पर हिंसा लेकर के यदि निंदा करें वो तो जरूर खराब है, वो भक्ति का बात है, सच्ची बात कुछ भी नहीं है जगत में। आपका नाम क्या है? आप बड़े भारी साधु हैं, ये सच है कि गलत है, बतलाइए तो क्या है, साधु तो है नहीं, आप खुल जाएंगे, बहुत बड़े भारी भाई याद गृहस्थ है, क्या है, स्वयं भगवान ही है। ये तो मिथ्या है ना, आपका नाम पूछा, ये नाम क्या है, ये झूठ बोलेंगे, आपका घर इनका नाम ही भगवान है, ऐसा ही। अभी जगत में व्यवहारिक सभी असत्य, आप सत्य समझ नहीं पाएंगे, अब धीरे 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 वैष्णव का संग कर रहे हैं, अब अस्वस्था में मारा गया ये सब लोग देख रहे हैं, ये नहीं मरा, देखा ना सब ज्योतिषी का, ये कहाँ मरा, अरे मर गया है, मार दिया है भीम ने, जब भीम हम देखेंगे तब हम मरे, हम ऐसा नहीं कर, ये कह रहे हैं उसके पिताजी बने द्रोणाचार्य, यदि ज्योतिषी महाराज कहेंगे कि हाँ मारा गया तो उन पर विश्वास करेंगे, और किसी की बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अपना सिर दे सकते हैं किंतु झूठ नहीं बोल सकते। तो युधिष्ठिर से कृष्ण का जो कहो, कहे मरा थोड़े है जो मैं कह दू, कभी नहीं मरा है, मैं जानता हूँ कि वो मरा नहीं, तो मैं कैसे कह दू, कहे मरा नहीं, अच्छा मैम इस हाथी को मारो तो इसका नाम है अश्वत्थामा, तो मारो तो उन्हें भी मैं एक गदा मारी और उसको पकड़ करके और फेंक दिया आकाश में, वो एकदम आकाश के उस पृथ्वी के मध्वाकर्षण शक्ति को पार करके चली गई, वो लौटी ही नहीं। कहे अब तो कहो जे मरी। उन्होंने कहा जी तो हाथी मरा, हम कैसे कह दे अस्था था, तो यही कह दो ये अस्वस्थ हम मारा गया हाथी मारा गया, ये कहो अस्वस्थ हम हता इति गजा, ऐसा कह दिए। तो इतने में उन्होंने कहा अब पहले से ये सब तैयार हैं। जहां उन्होंने कहा जब समा हता इतने में जैसा जोर से शंख बजा हजारों, तो वो इति गजा वो किसी को सुनाई नहीं पड़ा। वही कारण उसको अब मैं उसी किसे पा रहा हूँ। तो कृष्ण की दृष्टि में है ये सच है, ये भीष्म जो परम सत्यवादी हैं उनके लिए है ये झूठ है। अब कौन सा सच है कौन सा झूठ है बतलाइए, सचमुच में कौन सा सत्य है आप बतलाइए, इन पर छोड़ दीजिए कौन सा सत्य। आप कहेंगे जो भविष्य जो कह रहे हैं वो क्या क्या कहा, वो तो देखा जाए हाथी मरा नहीं और कहा कृष्ण कह रहे हैं। हाथी अस्वस्थ में मरा कि नहीं ये बतलाइए, कहाँ मरा, हाथी मरा किंतु अस्वस्थ में मरा नहीं। और कृष्ण कहेंगे तुम कहो गए अस्वस्थ में यही मरा गया, हाथी के लिए नहीं कह रहे, ये जो अस्वस्थ समा द्रोणाचार्य का पुत्र है ये मारा गया ये कहो। कृष्ण ऐसे गलत शिक्षा क्यों दे रहे हैं, जो बोला
शिक्षा देने के लिए वो उनको अहंकार से बन गया थे अपने सत्य वाले
नहीं, सत्यु तो अस्वस्थ समा मरा हुआ है। और जिनको उन्होंने इस संदेह को दूर कराने के लिए विश्व रूप दिखलाया दिखलाया जैसे भीष्म पितामह द्रोण और दोनों तरफ की सेनाएं जितने लोग हैं कृष्ण के दांतों के तले में चिपके हुए मरे हुए पड़े हैं, ये दिखला है। और यह बात शरीर सब समय मरा हुआ है, ये यही तो समझिए, ये मान लिया कि जैसे एक कल्प तक भी जीवित रहे, जैसे ब्रह्मा कितने कल्प तक रहते हैं जीवित, उनके एक
100 कल्प
तक जीवित रहते हैं।
हाँ
एक दिन में एक कल्प, एक वर्ष में 365 इतना कल्प हो गया और इनको इससे गुणा कर दीजिए
100 12 महीने,
इतना ये कल्प तक जीवित रहते हैं, इसके बाद में ये भी मर जाते हैं। और अस्वस्थामा केवल एक मनमंत्र के लिए जीवित है, एक मनमंत्र के लिए बस। हाँ तो 14 इसमें इंद्र इत्यादि बदल जाएंगे वैसे ही, इसलिए अस्वस्थामा का शरीर भी जड़ शरीर है, ये सब समय मरा हुआ है। जैसे हमारा ये कुर्ता कमीज ये सब मरा हुआ है ना, जड़ है, जड़ माने मरा हुआ माने जड़ है, हाथ उठाते हैं तो ये उठता है तो इसका मतलब नहीं ये भी चेतन हो गया। वैसे अस्वस्थामा का ही नहीं विश्व ब्रह्मांड का जितना स्थूल शरीर है ये मरा हुआ मिट्टी जल वायु आकाश अग्नि है। इस तथ्य को ज्योतिष महाराज जी नहीं सुन सकते इसलिए वो देखो। और आत्मा है वो अजर है, मन है वो मन बुद्धि अहंकार चित्त एक सूक्ष्म शरीर अनादि है किंतु शांत है, शांत माने अंत भी। इस तत्व को जो जानता है वो ठीक है वो सत्य है, इसलिए जो युधिष्ठ महाराज जी दिखला रहे हैं जानते तो हैं कि तो इग्नोरेंस जैसा दिखला रहे हैं कि ये सत्य भाम क्या सत्य अस्वस्थामा ये मरा हुआ है जीवित है शरीर को लेकर के ना कि आत्मा को, शरीर से वहां पर बातचीत हो रही है, शरीर मारा जा रहा है शरीर जीवित रह रहा है, इसलिए ये सब में ये व्यवहारिक सत्य होने पर भी इसका एक भी मूल्य थोड़ा पारमार्थिक सत्य भी है। इसलिए कृष्ण पारमार्थिक बात सदा के लिए कह रहे हैं त्रिकालिक सत्य ये मरा हुआ है, इसके शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्षण में बदलता है, इसे कहा जो कहो जो मरे हैं। और दांत में लेकर के मुख में दिखलाया जितने वीर और जितने सेनाएं हैं दोनों तरफ की वो मरी हुई है दिखलाया। इसलिए जो धृष्टि महाराज जी का व्यवहारिक सत्य था उसका कोई मूल्य नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम कहो सीखो ये सत्य किसको कहते हैं, इसलिए उनको नरक का एक दिखना पड़ा। इसलिए मान ले कि कोई एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को कहता है ये सत्य नहीं ये झूठ है, और जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं ये झूठ है, तो जो ऐसा सत्य को पकड़ कर रखते हैं उनकी बात सत्य होगी। व्यवहारिक के रूप में अधिक नहीं जाने चाहिए, किंतु दोनों ही व्यवहारिक लाइन में अभी हैं तो वो लड़ते हैं झगड़ते हैं ये सब करते हैं,
सत्य
क्या असत्य तो अगर उनको पता ही नहीं है
हमारा सत्य और असत्य की भेद बुद्धि के ऊपर, और अगर गुरु सेवा का ही भाव हो उसमें भी अगर एक गुरु की शिष्य में दूसरे गुरु शिष्य में आपस में वाद विवाद होता है
वो ठीक नहीं है ना, क्योंकि हम परमात्मा जा रहे हैं हमको ये सब कुछ सीखना होगा। पहले हम इन्हीं व्यवहारिक सत्यों को सत्य मान करके चलेंगे, किंतु जैसा जैसा संग होता जाएगा जैसा जैसा भजन होता जाएगा हम इन विचारों से ऊपर उठते हुए चलेंगे। अभी उसमें हम एक सीढ़ी को छोड़कर के दूसरी सीढ़ी में हम ऊपर वाली में पैर नहीं देंगे, ऐसा नहीं होने, इसी के लिए शिक्षा है ये बच्ची। यज्ञ धर्म में इस चीज को दिखलाया गया है, लाड़ी में ऐसा जबकि हरिनाम कर रहे हैं ना पहली स्थिति में तो उनको सुर ताल का ये ज्ञान है, वो समझते हैं संकीर्तन किसको कहते हैं, जब हारमोनियम बहलाए स्राज में लेकर के हम करते हैं और सब लोग कहते हैं ताली बजाते हैं वाह 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 बहुत सुंदर सुंदर, पहली स्थिति में समझ नहीं सकते कि ये वैष्णव टी की धारी जो मुंडन मुड़ा में यहाँ तक पहन रहे हैं और सब जैसे देखने में लगते हैं, उनकी अभी गीति में इनकी रुचि नहीं है कीर्तन में, उनकी रुचि है कलावती सुर में, कलावती सुर मैंने क्या कालवाती मैंने मुगल के समय में मुगल समय में दरबार में जो बीरबल और ये सब बैजू बावरा और ये सब गाते थे ना वैसे सुर में ये कीर्तन उनमें अच्छा लगता है, वैष्णव लोग वहां कोई नहीं बैठता चला जाता है इनको बड़ा बुरा लगता है, यदि ये कीर्तन का अनादर कर रहे हैं वो कीर्तन कर रहे हैं ना हरे कृष्ण देखते हैं कि वो जो श्रोता है उसका भाव कैसा है, वो हमारे तरफ में आकर्षित हो रहा है कि ये कीर्तन है कि नहीं है, किंतु खूब स्वर से करे हरे कृष्ण आंख में आंसू भी आ रहे हैं ये कीर्तन नहीं है, जब हृदय से हो और भगवान के लिए ही हो तो वो कीर्तन कीर्तन है। इसलिए उनका फिर पीछे जब तत्व ज्ञान हुआ तब उनका मोह खत्म हो गया, तब फिर लौकिकता से परमात्मा ऐसे ही होता है, धीरे धीरे इसमें शिक्षा होती है। अभी हम लोग जो भजन कर रहे हैं अभी गरीब एक अंगुली की या दो अंगुली ऊपर उठाएंगे अभी तक ये भजन हमारा नहीं हो रहा है, ये उपलब्धि होनी चाहिए। हम विचार करते हैं कभी कभी तो बड़े निराशा हो जाती है मुझको कि भाई अभी तक जो नाम कर रहा हूँ अभी तक तो ये कोई नाम ही नहीं हो रहा है, ये कौन विचार करेगा, जब मध्यम अधिकार में वो प्रवेश कर जाएगा तब ये विचार करेगा, कनिष्ठ अधिकारी से इसको कभी विचार ही नहीं कर सकता है, संभावना ही नहीं इसका ये हमारा नाम हुआ कि नहीं हुआ इसको विचार नहीं करेगा।
एक घंटा
हारमोनियम ला दो यहाँ पर थोड़ा सा हरिनाम सुनाए, इसको दोष मानते हैं तो दिनों में यदि किसी को पार्थक्य आया था ये दोष नहीं है, किंतु संसारिक जो बातें हैं कोई दुर्गुण के काम में फंसा हुआ है, कोई व्यक्ति जगत में निष्ठुर है तो नीचे किसी से बातचीत नहीं करता, कड़ी कड़ी बातें करता है, डांट फटकार देता है, रूखड़ी बातें करता है और एक मधुर रूप में बात करता है, ये जो गुण दोष है ये यदि पर विचार कर तो ये गड़बड़ी क्या है, क्योंकि मधुर रूप में जो बात करके अपना बात हासिल कर देता है वो अधिक खतरनाक है वनस्पति रूप से, किंतु फिर भी ये ठीक है मधुर भाषी सत्य हो सत्यम ब्रुवम मा ब्रुवम असत्यम, असत्य यदि हो मधुर नहीं है तो मत बोलो, ये शास्त्र की नीति है साधारण लोगों के लिए, किंतु बड़े बड़े जो उपनिषद हैं उनमें ये लिखा गया है सत्यम ब्रुयात किंतु मा असत्यम ब्रुयात यदि प्रिय, यदि असत्य प्रिय भी है तो मत बोलो उसको कहो, साधारण लोगों के लिए मना है, और जब नारद इत्यादि जो है दूसरे लोग उनके लिए कठोर भी यदि सत्य है तो उसको बोलो, देखो ये जो तुम सिगरेट पी रहे हो ये तुम्हारा जम है, अच्छा आप सिगरेट के प्यार ना पीए, और एक आदमी ने कहा ये देखो ये तुम्हारी मृत्यु है, सुनना, शत्रुता नहीं है ये कारण। हम लोग रास्ते में आ रहे थे, कहीं कलकत्ते से आ रहे थे यहाँ पर मथुरा के लिए, तो कुछ लोग हम लोगों के साथ में बैठे, बड़े राजस्थान के थे, लंबे चौड़े मोटे लंबे, ये सब पढ़े लिखे बड़े धनी आदमी थे, तो वो लोग गैम्बलिंग मैंने वो
हाँ,
वो भी करने लगे, और बीच बीच सिगरेट का कष्ट छोड़ते थे उनके बाद। हम लोगों की यात्रा ही सब तरह, तो हमने थोड़े से उसमें कुछ कहानी आरंभ कर दी, तो उनको कुछ रुचि, मैंने भाई पहले इसको बंद करके तब सुनो, तो वो तो बंद की। फिर जब हमारे ऊपर में कुछ श्रद्धा वही सुन करके, तो एक लड़का जो सब में बात मिनट मिनट में सिगरेट पी रहा है, ये दिया बेटा ये जो सिगरेट पी रहा है तुम्हारे शरीर में तो देखते हैं कि ज्ञान नहीं है, अब तब भी उसको पी रहा है, उस दिन तुमको कैंसर होने की संभावना है, अब तुम बेमौत का मौत हो।